बात आगे चलती गई, मुसलमान मिलते गए। अव्वल दौर में जो लोग मुसलमान हुए, मैं सिर्फ इस सोच के साथ इनके नाम बोलती हूँ कि आप अपने नामों में चेक करें। क्या इस्लाम की दावत जब अपने आगाज़ में हमारी ज़िंदगी में आती है, तो क्या वाकई मैं भी इन लोगों में हूँ? यानी आप देखिए कि अबू उबैदा, जिनको बाद में अमीनुल उम्मा का लकब मिला एक मौके पर अल्लाह के नबी की ज़ुबान से, अबू सलमा, उनकी बीवी उम्मे सलमा, अरकम बिन अबिल अरकम, उस्मान बिन मज़ून, इनके भाई क़ुदामा बिन मज़ून, अब्दुल्ला बिन मज़ून, अबैदुल्ला बिन हारिस बिन अब मुत्तलिब, सईद बिन ज़ैद, अमर बिन नुफैल, और इनकी बीवी जो हज़रत उमर की बहन फ़ातिमा थी, हबाब बिन अरद, जाफ़र बिन अबी तालिब, इनकी बीवी अस्मा बिनते अमीस। नामों को सुनते देखें ताकि आप भी कल जब पढ़ें तो और आप सही लगाएं, तो क्योंकि ये नाम हम सही नहीं पढ़ते बाद में ना, और ये आपने ग्रुपिंग में पढ़ने हैं बाद में, ताकि आपको इनके नाम लेने आए। फिर देखिए खालिद बिन सईद, बस पहले दो नाम काफ़ी होते हैं, अगले नसब को बेशक छोड़ दें। इनकी बीवी अमीना बिनते खल्फ, फिर इनके भाई अमर बिन सईद, खातिब बिन हारिस, इनकी बीवी फातिमा बिन मुजल्लल, फिर इनके भाई खत्ताब बिन हारिस, बीवी इनकी फकीहा थी, फिर इस तरह मोमर बिन हारिस, मतलब बिन अज़हर, रमला बिन ते अबी औफ और नाइम बिन अब्दुल्ला। ये एक काफ़िला था जो मुसलमान होता है। मुझे ऐसा लगता है अपनी ज़ुबान में हम सिर्फ ये कहें कि ये फर्स्ट बैच के लोग थे। दीन की दावत जब आई तो इन्होंने फ़ौरन उस दावत को कबूल कर लिया। इन सब का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से था, उसकी मुख्तलिफ़ शाखों से ताल्लुक़ रखते थे, और जिसमें इनको मुख्तलिफ़ तरह से चीज़ों की तरफ बुलाया जाता था। इस इब्तदाई दौर में कुरैश के अलावा दूसरे कबाइल से भी कुछ लोग मुसलमान हो गए, जिनमें अब्दुल्ला बिन मसूद थे, मसूद बिन रबिया थे, अब्दुल्ला बिन हजश थे, और इनके भाई अबू अहमद बिन हजश थे, सुहैब बिन सनान, अम्मार बिन यासिर, और इनके वालिद यासिर, और इनकी माँ सुमैया, और आमिर बिन फुहैरा, ये मुसलमान हो गए। अब आप कहेंगे कि अच्छा, हम भी कभी उस दौर में होते ना तो मुसलमान होते। तो कोई बात नहीं है, आपके पास आज भी चांस मौजूद है। जब सच्ची दावत आपके कानों पे पड़े, उसको कबूल कर ले। कितने ही लोगों तक कुरान की दावत जाती है ना, तो जिन सईद रूहों ने उस दावत को कबूल किया, इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ उनका मुकाम वही होगा उस दौर के मुताबिक। कुछ औरतें भी हमें मिलती हैं कि जो अल्लाह के नबी के बिल्कुल आगाज़ में मुसलमान हो गईं, उसमें उम्मे ऐमन थी, बरका के नाम से मारूफ थी, हबशिया थी। पीछे बात हुई कि अल्लाह के नबी को अपनी गोद में खिलाती थी, आपके वालिद की लौंडी थी, और इसी तरह हज़रत अब्बास की बीवी उम्मुल फजल, जो अल्लाह के नबी की चची कहलाई, चची थी ना, ये मुसलमान हो गईं। इसी तरह अस्मा बिनते अबी बकर, जो अबू बकर की बेटी थी, ये भी मुसलमान हो गईं। आप कहेंगे कि अच्छा, ये मुसलमान हो गए सारे, तो हज़रत आयशा क्यों नहीं हुई? बहन अस्मा तो हो गई हैं। तो जवाब क्या इसका? आयशा तो तब थी ही नहीं, आयशा तो बहुत बाद में पैदा हुई। तो लिहाजा आप देखिए कि अबू बकर बाप अच्छे थे ना, तो बच्चे भी मुसलमान होने लगे। इन सब को साबिकीन अल अवलीन कहते हैं। अल्लाह हमें इनमें शामिल कर ले। आप देखिए कि इनके इस्लाम की वजह से की, और कहते हैं कि तकरीबन 130 तक ये लोग थे जिन्होंने शुरू शुरू में अल्लाह के नबी की दावत को कबूल किया और मुख्तलिफ औकात में मुसलमान हो गए। अब आप सोचिए, मैं इनको पढ़ती हूँ ना चीज़ों को, तो मेरा दिल नरम हो जाता है, रकीक हो जाता है मेरा दिल। मैं सोचती हूँ कि आज का दौर भी तो ऐसा ही है ना। अल्लाह सुबहाना ताला जब भी कोई दीन की बात करता कराता है, तो उसके अंदर मौके मिलते हैं, बहुत सारे लोगों तक दावतनामे जाते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, देखिए एक शादी होती है ना, तो मामूमा लोग 300-400 से लेके 1,000 लोगों तक को इन्वाइट करते हैं। अगर वो 1,000 लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं, मैंने नहीं कभी सुना कि 1,000 को बुलाया था उसमें से 100 आए सिर्फ, और 900 लोगों ने कह दिया हमारे घर में ये मसला है वो नहीं है। पहुंच के लोग पहुंचते हैं, शादियां होती भी रातों को हैं, दूर भी होती हैं, आधी आधी रात भी जागना, हफ्ते में एक एक शादी में 4-4 दिन भी लोग जाते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं। और ना कोई जाए तो शादी फिर भी हो जाती है। लड़के लड़की के बगैर आप देखिए जितने भी लोग वहाँ होते हैं, वो आखिर क्यों जाते हैं? लेकिन आप देखिए कि जब कोई दीन की दावत का कोई कार्ड, कोई फ्लायर, कोई फ़ोन कॉल, कोई ईमेल जाती है, तो उसको कितने लोग संजीदगी से लेते हैं। हम अपनी दुनियादारियों के कामों के लिए दीन की बात सुनने पसंद करते हैं, लेकिन जो असल गम है ना इस वक्त हमें, हम उसकी फ़िक्र नहीं करते, हम उसके ऊपर परेशान होते हैं। अल्लाह के नबी के साथ एक ऐसा खूबसूरत ग्रुप तैयार हो गया। अब सवाल पैदा होता था कि ये जो मुसलमान हुए अब करें क्या? यहाँ से फिर अमल की बात नोट करें कि आज कोई कन्वर्ट होता है, हमारी आपकी कोशिश है, तो अब उसको छोड़ नहीं देना कि बस जी अब इनको अल्लाह अकबर और मिठाई बांट दो और उसके गले में फूलों का हार डाल दो, मुसलमान हो गया। नहीं, अब तरबियत करनी है। अल्लाह के नबी का जो अगला काम क्या था कि अपने इन साथियों की तरबियत करें। तो तरतीब नज़ूल के अतबार से अगर आप सूरतें देखें ना, तो मुदस्सर के बाद फिर कहते हैं कि पहली सूरत नाजिल जो होती है ना, वो सूरत फातिहा है। अब यहाँ आपको कुरान की थोड़ी तरतीब भी समझ आएगी। हम कहते हैं समझ नहीं आती, एक सूरत इतनी छोटी, एक इतनी बड़ी, एक मक्की एक मदनी, ये क्यों है? तो उस दौर में जहाँ कुरान उतर रहा था वहाँ की ज़रूरत थी कि सहाबा अब जो इस्लाम पे आ रहे हैं उनकी तौहीद पुख्ता की जाए। और हम जानते हैं कि सूरह फातिहा में अल्लाह ताला की हम्द, तारीफ और दुआ का तरीका बताया गया, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की सिफात के साथ, मालिक यौमद्दीन के साथ, मरने के बाद, दोबारा उठने के बाद अच्छे या बुरे नतीजे होंगे। गोया के एक हिडन मैसेज होता है कि इस दुनिया से जाने के बाद तुम यहाँ छोड़ नहीं दिए जाओगे, बल्कि हकीकत में तुम्हारे साथ अच्छा मामला बुरा होगा। नतीजा क्या है कि सूरत अल फातिहा की सूरत में लोगों का ताल्लुक बिल्ला मजबूत किया गया, ताल्लुक बिल दुआ मजबूत किया गया, और ताल्लुक बिल आखिरा मजबूत किया गया। अब ये देखिए, हम किसी को दीन पे देखते हैं ना, सबसे पहले हम फिकी बातों में पहुंच जाते हैं। बेतुकी बात है, मैं कहीं थी तो किसी औरत से बात हुई, ऐसी थोड़ी बात हुई, मैं नॉर्मली इतनी करती नहीं, लेकिन कुछ बात उन्होंने पूछी मैं क्या करती है, मैंने कहा इधर एक स्कूल है, आपको पता है कि नहीं, इधर कहीं करीब ही थी, वो यहीं से गई हुई थी। तो मैंने जब बताया तो मैंने कहा वहाँ एक नूरुल कुरान के नाम का स्कूल है। मैं ये भी नहीं कहती कि मैं वहाँ पढ़ाती हूँ, मैं एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताती हूँ। कहती हाँ सुना हुआ है उनका ना, तो मैंने कहा आप जाएँ वहाँ, मैंने सुना है कि कोर्सेज़ हो रहे हैं और नए कोर्स शुरू हो रहे हैं। फिर उसको पता चला कि मैं उधर ही हूँ, तो कहने लगी क्या फ़िरका है आपका? उसकी टोन बदल गई मेरे से बात कर, कहती पता है हमें उसका ना, क्या फ़िरका है आपका? तो मैंने कहा मुसलमान। कहती नहीं, किस फिक को मानते हैं आप लोग ना? उसकी बातों से ना एक जलन थी, मुझे लगा इसने बहुत कुछ हमारे खिलाफ़ सुना हुआ है। सच्ची बात है, वो बिल्कुल बेजरर सी औरत थी, लेकिन जो ही लफ्ज़ नूरुल कुरान बोला तो मुझे लगा कि ये नाम नया नहीं है, उसने कुछ सुना हुआ है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों फिकों को मानते हैं, चारों इमाम थे, नेक थे, वो थे। अच्छा अच्छा ठीक है, बस उससे आगे फिर बात नहीं हुई ज़्यादा हमारी ना। यानी इतना जहर में बुझे हुए तीर इतना नुकसान नहीं देते जितना बैड प्रोपेगंडा लोगों को दीन से दूर कर देता है, सिर्फ इसलिए कि पता ही कोई नहीं। जब अल्लाह के नबी के साथ कोई मुसलमान होता था ना, तो आप लिख लें, अब यहाँ आपके लिए वो बात समझ आ रही है आपको, जो मसहब बकर का नाम हम तो कह रहे हैं साबिकीन अलवलीन, हम तो अली को क्रेडिट दे रहे हैं, हम तो जैद को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में वो चलते फिरते थे वो लोग क्या कहते थे? कहने लगे कि अबू बकर साबी हो गया, स्वात अलिफ बा या साबी। साबी का मानी क्या था उस दौर में? बेदीन। जो बंदा बाप दादा के तरीके को छोड़कर कोई नया दीन इख्तियार कर लेता था ना, उसको लोग साबी कहते थे। खुद नबी सल्लम को लोग कहते थे कि नऊज़ु बिल्ला इसने कोई एक नया दीन शुरू कर दिया है। देखिए दीन नाम का कोई रंग नहीं था उनकी ज़िंदगियों में, लेकिन अपनी वो बेदीनी पे बड़े खुश थे और उसी में अपने आप को मुतमईन करते थे। कल साबी था, आज लोग क्या कहते हैं? वहाबी। ये साबी की बहन ही वहाबी है या साबी का भाई वहाबी है? ना कल साबी की कोई हैसियत थी ना वह आज वहाबी की कोई हैसियत है, लेकिन जिसको आप कुरान और सुन्नत की बात करता देखेंगे, आप देखिए पूरे माशरे में लोग वहाबी बोल देंगे। अगर आप औरों को तो छोड़ दें, हम सिर्फ अपने ऊपर लेके सोचें, तो यहाँ मेरा ख्याल है कि हमारे पास वो साथी बैठे हैं। आप हमें कितने साल से जानती है? नॉर्वे में तो आए हुए 4th साल है ना, तो आप तो हमें मेरे हल उससे भी 2-3 साल, 7-8 साल से जानती हैं ये। मैं अकेले में इनको लेके बैठ जाइएगा, आप में से कोई नया बंदा, और पूछें कि ये 7 सालों में कभी इन्होंने भूल से, चूक से, प्यार से, मोहब्बत से कहा कि हम वहाबी हैं? कभी कहा हमने जी? कभी कहा कि वहाबी हैं? आप लोगों ने कभी सुना हमसे वहाबी का लफ्ज़? हम तो खुद नहीं जानते कि वहाबी कौन होते हैं। सिर्फ एक बात है, लेकिन याद रखिए ये असल में इस बात की खबर भी है कि आप हक पे हैं, ये भी सच रखें। जिसको लोग कहें ना फलां तो बड़ा वहाबी है, कहना अल्हम्दुलिल्लाह इसका तो वो ठीक ही होगा। सच्ची बात है, क्योंकि वक्त का जो रिवाज होता है ना, ये ख्वाहिशों वाला होता है, लोग अपनी ख्वाहिश परस्ती के साथ जी रहे होते हैं ना, तो उनको मज़ा आता है। जो कुरान सुन्नत की बात करेगा लोगों को वो अच्छा ही नहीं लगता। इस तरह की बातें कर करा के लोग अजीबोगरीब बातें करते थे, लेकिन ये लोग जमे रहे। तरबियत, तज़किया, इस तरह से आयतें आती थी कि जो लोगों के दिलों को जमाती थी। अहकामात में सबसे पहला हुक्म जो दिया गया वो नमाज का था, और वुज़ू का तरीका था, और सुबह शाम 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका था। और आपको पता है कि नमाज का हुक्म, जो असल हुक्म इस वक्त है, ये कब दिया? आज तो आप नबूवत की इब्तदाई घड़ियों में ना 13 मंजिलें ऊपर तय करने के करीब होंगे। सन 1190, 11 साल हो गए इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी कौएबे, तब अल्लाह के नबी का मेराज का सफ़र जब हुआ, वहाँ मेराज के मौके पे 5 नमाजों का तोहफा दिया गया। फिर वहाँ से वापस आए तो अगले दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने आपको नमाज पढ़ाई, वक्त बताए, तरीका बताया। इतने साल बाद ये तरीकों पे बात आई। आज लोग फौरन ये फिकही बहसों पे पहुँच जाते हैं, हालांकि आप देखिए कि दीन तो तरबियत और तज़किए का दीन है। बहरहाल, तहारत की बातें बताई गईं, वुज़ू को नमाज की शर्त ठहराया गया, सूरत फातिहा को बंदे और अल्लाह के बीच में एक खूबसूरत ताल्लुक़ बयान किया गया। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम चलता गया। शुरू में नमाज बस ऐसे ही थी जैसे हर दौर की नमाज होती है। दूर घाटियों में चले जाते थे, वहाँ इबादत करते थे, कोई अंधेरों में छुप के करते थे क्योंकि खौफ बहुत था लोगों का। इसके अलावा आप देखिए कि इस्लाम के इब्तदाई दिनों में किसी और इबादत का हुक्म नहीं मिलता, कोई अमर, कोई नहीं, ये करो वो नहीं करो, सिर्फ एक दावत थी, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, लोग अल्लाह को एक मानो फला पाओगे, ये दावत थी। और साथ ही साथ तस्किया, तरबिया, नबी की आमद का जो मकसद है, युज़क्कीहिम, इस पे जोर था। और दूसरी, ऊपर से अभी आप सुनेंगे कि जो मुसीबतों के पहाड़ टूटने लग गए, उनको धमकियां मिलने लगी, उससे फिर उनका तस्किया हो गया। गोया कि आप कह लीजिए कि जो बंदा नया नया दीन पे आए, सबसे पहले उसको अल्लाह की ज़ात का तारुफ कराएं। है कौन ना शुक्री होती है, अल्लाह का पता ही नहीं है कि हम खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, उसका ना फरमानियाँ करते हैं। दूसरी चीज़ जो इस शुरू के दौर में हमें मिलती है ना, वो रिसालत थी। लोगों का दिल ये मान ही नहीं रहा था कि एक शख्स 40 साल तक हमारे बीच में रहा और आज एकदम ये कह दे मैं नबी हूँ, और नबी बन के चलो मान लेते नबी है, कोई बड़ी बात नहीं। मसला क्या था कि ये हमारे बाप दादा के तरीक़ों पर तनकीद करता है, हमारी शादियों के तरीके इसको अच्छे नहीं लग रहे, हमारा मरना जीना, इसकी रस्में इसको बुरी लगती हैं, हमारे कुरान पढ़ने के तौर तरीके इसको ठीक नहीं लगते। इस वजह से वो अल्लाह के नबी को नहीं मानते थे, या नबी नहीं मानते थे। वैसे आप देखिए अल्लाह के नबी से उनको कोई बुरा नहीं था। आज भी आप नोट करें, कुछ लोग हैं कि शख्सी तौर पर आपको बहुत पसंद करेंगे, आपसे मिलते हैं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा मज़ा आता है, आपका इखलाक कितना अच्छा है, आप लोग कितनी इज्जत देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आते। वजह क्या है कि ज़ात से आपकी उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, आपके पैगाम से तकलीफ़ है। तो मक्का वालों ने, ये लिख लें जुमला, आगे मदीना वाले दौर में भी जाएंगे तो इसको दोहराएंगे, मक्का के लोगों को नबी की ज़ात से कोई गिला नहीं था। आपके अपने घर के बच्चे थे, किसी के चचा के बेटे, तो किसी की फुफ्फो का बेटा, तो किसी का रिश्तेदार था, कोई कुछ था, आपसे मोहब्बत करते थे मक्का वाले, लेकिन ऐसी ही मोहब्बत थी जैसे आज आजकल आपके साथ हो रहा होगा कभी कभी, कि चूंकि आप दीन पे आ गई तो अब आपके अपने रिश्तेदार ही आपको अपनी दावतों में नहीं बुलाते, या आपको शादियों पर नहीं बुला रहे होंगे कि भाई ये तो अब आएंगे नहीं, यानी एक चपकलश थी। लेकिन मदीना में जाकर लोगों की दुश्मनी, जिन्होंने मुखालफत की, उनकी नबी की ज़ात से थी। तो बहरहाल, किस्सा मुख्तस यह है कि दूसरी चीज़ नबी की ज़ात का तारुफ था। तीसरा मारूफ टॉपिक जो मक्की दौर का था वो था ईमान बिल आखिरा, मरने के बाद जीना। आप देखिए कि हज़रत इब्राहिम और इस्माइल के तनाज़र में देखें तो वो इन सारी चीज़ों को सुनते आ रहे थे, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन आप कुरान पाक में सूरह बकरा में 2 दफ़ा ये बात पढ़ लेंगे कि ए बनी इसराइल, उस दिन से डर जाओ जिस दिन ला तज्जी नफ्सुना नफ्सन शैया वला तुकबलु शफातुन, के सिफारिश काम नहीं आएगी, जिस दिन कोई काम नहीं आएगा। क्यों? कि मक्का वाले मानते थे कियामत को, इनकार नहीं करते थे, लेकिन उनके अकीदों में इस किस्म की बातें शामिल हो गई थी कि कोई वली आएगा तो हमारी सिफारिश करा देगा, इब्राहिम आएंगे तो हमें बचा के ले जाएंगे, हम ये बैठे हैं, हम इब्राहिम की नस्ल से होने की वजह से बच जाएंगे। तो इस तरह की खुशफहमियाँ पैदा हो गई थी उनके दीन में। आएगी क़यामत लेकिन हम बच जाएंगे, क्योंकि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं। आएगी क़यामत लेकिन नूह अलैहिस्सलाम आएंगे तो हमें बचा लेंगे। तो इस मक्की दौर में इन गलत फहमियों का इजाला किया गया, बिल्कुल जैसे आज के दौर में आप देखें कि लोग कहते हैं जी वली और बुज़ुर्ग और औलिया कराम हमारी सिफारिश करेंगे, करो चोरियां, खाओ सूद के काम, करो सब कुछ, गलत चीज़ें पहनो, देखो कोई बात नहीं, फुलां आएंगे, गौसे आज़म साहब हमारी सिफारिश करके ले जाएंगे। कितना मारूफ खुल गया आज के दौर का, फुलां आएंगे अब्दुल कादर जिलानी, वो हमें बचा के ले जाएंगे। बिल्कुल जो आज वलियों के साथ लोगों की सोच है ना, मक्का के दौर में लोगों ने नबियों के नाम के साथ जो रखी थी। तो ये तीन चीज़ें मक्की दौर में इन लोगों के जहनों में पुख्ता की गई। 3 साल गुजर गए, ये वो 3 साल थे कि जिसमें मक्का वालों ने कोई इतना नोटिस नहीं लिया। कहते हैं ये एक छोटा सा ग्रुप है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं, चंद का दिमाग फिर गया, सर फिरे लोग हैं, फनेटिक हैं, जज्बाती हैं, औरतों को घरों से निकाल के इन्होंने बिठा दिया, ये देखना एक भूत है सवार हुआ हुआ है। इन 3 सालों में खुफिया तबलीग हुई थी, खुफिया से मुराद आप लिख ले वन ऑन वन बेस पे, अकेले अकेले होती थी, खुल के नहीं हुई। जब खुल के काम नहीं होता तो उसका इतना एक्सपोजर भी नहीं होता, कहीं पता चल जाता था तो उसको बुरा कह देते थे, बात ख़त्म होती थी। कहीं कहीं घरेलू सतह पे ईमान लाने की वजह से लोगों को सताया जाता था, यानी बीवी मुसलमान हो गई तो शौहर ताने देने लग गया कभी लेकिन एक इज्तमाई मसला नहीं ये बना था, कोई पूरे मुआशरे में ये प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, क्योंकि ऐसा कोई मामला ही नहीं था। और अल्लाह के नबी चूंकि अभी लोगों को तैयार कर रहे थे दीन के नाम पे, तो आपने भी किसी किस्म की उनके बुतों और इसके बारे में बात नहीं की थी। तो ये 3 साल पूरे हुए, अभी तक हमने क्या किया, नबुवत का पहला मरहला मक्की दौर का, जिसके अंदर वन ऑन वन बेस तबलीग थी, थोड़े पैमाने पर काम हो रहा था, लोगों में जिसमें खैर ज़्यादा देखी जाती थी उनको दावत दी जाती थी, ये हो रहा है। इसके अलावा अभी खुले आम दावत नहीं दी जा रही, या अब इंशाल्लाह इससे अगली नशिस्त में जब हम देखेंगे तो हमें उसमें समझ आएगी कि फिर उसमें स्ट्रेटेजी क्या थी। मेरे और आपके लिए अमल की बात इसमें यही है कि अभी अगर आप अपने ख़ानदान की पहली सिस्टर है ना कि जो कुरान की शौरी तालीम ले रही हैं, तो फिर आप अभी पूरे ख़ानदान में जाके बरमला ऐलान ना कर दें अपने अकायद और नज़रियात का। और ऐसे ही 2-4 गिने चुने मसले हैं जिसको बुनियाद बना के लोग आपको परख भी लेंगे, मसले पूछेंगे आपसे आके लोग, कज़ा उमरी क्या होती है, अच्छा कुरान खानी का क्या मसला है, अच्छा फातिहा किधर पढ़नी है, अच्छा रुकू में हाथ उठाने कि नहीं उठाने। आप कहना हमें तो ये बातें बताई नहीं, जब बताएंगे तो आपको बता देंगे। अभी सिर्फ लोगों को ये बताएं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, स्ट्रेटजी जो है ना दीन का काम करने की सीरत से लें। मैं खुद अपने आप को कहती हूँ, सच बता रही हूँ, ये सिर्फ आप नॉर्वे वालों से शेयर करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि ये नॉर्वे में हमारा आज 3रा ही 4था ही साल शुरू है, हमारा भी ये भी मक्की दौर है। मैं नहीं कोई बड़ी बात बोलती, लेकिन ये यकीन है कि जो तालीमात आपको दे रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म से 100% कुरान और सुन्नत में है। लेकिन इस शहर में अभी हमारा ये मक्की दौर है, अभी आपने मदनी दौर नहीं देखा, यहाँ का ज़िंदगी रहेगी तो देखेंगे। अभी तो चंद सर फिरे आ जाते हैं हमारी दावत पर, बाकियों को आप देखें, देखना है तो कंसर्ट्स में देखें, और दीन के नाम पे भी बड़े इज्तिमात में जाते हैं माशाल्लाह, जहाँ रंग रौनक और फूल पत्तियाँ और मौसमी रस्मी बातें हों। आप साल में सिर्फ एक दिन बुलाएं, आप देखिए कि शहर का सबसे बड़ा आप स्टेडियम ले लें, भर जाएगा इंशाल्लाह, बहुत लोग आएंगे। लेकिन लोगों को रोज़ आना, वक्त छोड़ के आना, स्कूल छोड़ के आना, जॉब छोड़ के आना, बच्चों को साथ लेके आना, ये अभी हमारा रिवाज नहीं है। तो आप सब खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको अगर इस दावत के लिए चुना है। कभी अपने पर तरस ना खाएं कि मेरे ख़ानदान में तो कोई नहीं है, कभी कभी आंसू भी आएंगे आपकी आंखों में अगर आप फर्स्ट हैं अपने ख़ानदान में से थे, लेकिन आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको एक उस छोटे से ग्रोह में चुना है और ये बुनियादें बन रही हैं। और अगर आप हम साथियों के अंदर कमी रह गई है तो फिर अल्लाह की पनाह आगे जाके क्या होगा। आप देख लीजिए जितने बड़े अजीम कारनामे अल्लाह के नबी के 23 साल दौर में हुए ना, वो उसी इब्तदाई ग्रोह ने किए। लोग मिलते तो रहे लेकिन वो अपने लिए दीन लेते थे, देने वाले, कुर्बानियां करने वाले और लोगों के लिए जीने वाले वो पहले ग्रोह होते हैं। ये एक सुन्नत रही है, आप देख ले अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ये सारी सहाबी हैं ना जिनके नाम आप सुनते हैं, क्योंकि ये कुर्बानियों पे जीते हैं, रिएक्शन आता है, इन्होंने बहुत कुछ इस्लाम को दिया है। आगे सुनते जाएंगे इंशाल्लाह, हम अपना खुद ब खुद मुहासबा करेंगे। कोई बात शेयर कीजिए जो इस हिस्से से आपने अपने लिए सीखी। जी आप प्लीज़।
जाएंगे तो फिर
इसलिए कि कलमे के तकाजे पूरे करो। तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो कलमा भी नहीं बजा सकेगा। अब्दुल्ला बिन उबई ने एक दफ़ा नहीं, लाख बार कलमा पढ़ा होगा अपनी ज़िंदगी में कमोबेश, लेकिन नहीं बचेगा क्योंकि उसकी गवाही मौजूद है कुरान में।